Om Shanti. आज हमारे बीच राजयोगी वरिष्ठ भाई मोहन भाई पधारे हैं। विशेष हम सभी को साकार ब्रह्मा बाप कैसे कर्मातीत हुए, वो कर्मातीत स्थिति जो आपने अपनी आंखों से देखी, क्योंकि अंतिम समय आप यहां मधुवन पांडव भवन में थे साकार बाबा के सन्मुख। तो हमने तो सिर्फ सुना या अभी सुनना है, आपने बाबा को कर्मातीत स्थिति प्राप्त करते हुए देखा है। हम वो आपके मुख कमल से सुनेंगे। आप करीब 51 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहे हो और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने पढ़ी है। बाबा ने आपको अलग अलग स्थानों पर लौकिक सर्विस के लिए भी जैसे भेजा, कोई न कोई सेवा करानी होती है। तो शुरू में तो बहुत कम सेवा केंद्र थे, काफी जगह पर नहीं थे, तो जैसे विशेष आसाम गुजरात आदि राज्यों में भी आपने सेवा केंद्र खोलने के निमित्त सेवाएं की है। अभी आप विशेष साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग जो हमारी कार्यरत है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। गुजरात में काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपने न सिर्फ अहमदाबाद को, लेकिन जहां भी बड़े प्रोग्राम्स होते थे, पहले तो मेले भी बहुत होते थे और लाइट हाउस आदि के भी जो प्रोग्राम बड़े हुए, हमेशा बल आप यहां मधुवन में ज्ञान सरोवर में सेवाएं देते हो समर्पित रूप से, लेकिन गुजरात को जब आवश्यकता होती तो तुरंत आप वहां कर मीटिंग में भी कई प्रकार के मार्गदर्शन देते रहे हो। ज्ञान सरोवर में सभी विंग्स का कोऑर्डिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से करते हो, बाबा ने वो विशेष जिम्मेवारी आपको दी है। और बाबा के काफी स्थानों पर आपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में अपने प्रवचनों का भी लाभ दिया है। प्लेटिनम जुबिली जो लास्ट ईयर मनाई गई उसमें भी 50 साल से ऊपर जो भी वरिष्ठ भाई या बहने थी, तो विशेष आपका भी उसमें सम्मान हुआ था। बाबा के द्वारा और दादियों द्वारा आप सम्मानित हुई विशेष आत्मा हो। कई प्रकार के अभियान, पर्यावरण या डिजास्टर मैनेजमेंट आदि के अभियान भी निकाले हैं, कई प्रकार के अवार्ड्स भी आपको प्राप्त है। अभी हम विशेष बाबा की कर्मातीत स्थिति जो आपने देखी वो आपके कमर मुख कमल से हम सुनेंगे। बाबा प्रकृति जीत कैसे बना, ऐसे कहते हुए कर्मा जीत या माया जीत ये तो बनना है, लेकिन प्रकृति जीत कैसे बने वो भी हम आपके मुख कमल से सुनेंगे। आदरणीय मोहन भाई जी।
ओम शांति। इस संगम युग में हम सभी के सामने ब्रह्मा बाबा एक रोल मॉडल हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति होते हुए, लौकिक घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, धंधा करते हुए, परिवार की पालना करते हुए भी बाबा किस प्रकार से, जब से इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया तो बहुत जल्दी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। कितने सालों में बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, कितने साल में? सिर्फ 33 वर्ष में, क्योंकि 1936 तक बाबा ग्रस्त परिवार में रहते थे। उसके बाद जब बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, बाबा का जीवन परिवर्तन हुआ, शिव बाबा ने बाबा को दादा लेखराज को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और बस तब से बाबा के सामने उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हो गया। और बाबा ने 1969 जनवरी में 1936 से शुरू किया और 1969 33 वर्ष से पहले ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। हम सभी का भी यही लक्ष्य है, हम सभी भी पुरुषार्थ इसीलिए कर रहे हैं कि हम सब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। और एक बार कर्मातीत अवस्था को अभी प्राप्त कर लिया तो कल्प कल्प के लिए वो जैसे नोंद हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया वो हमें सौभाग्य मिला है अपनी आंखों से भी देखने का। साकार बाबा के साथ तो कई वर्ष रहने का मौका मिला, 1961 में ज्ञान में आए, लेकिन मुख्य बात यह है कि 61 से 69 तक कई बार बाबा से मिले, लेकिन अंतिम समय में 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा ने जैसे अपने पास बुला लिया और दो दिन जो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो हम सब का भी यही लक्ष्य रहे कि हम सबको भी वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। पहले हम देखते थे 1961 के बाद जब ज्ञान में आए, बाबा से मिलते थे, बाबा को समाचार सेवाओं का सुनाते थे, स्वोन्नति का, सेवा का, ईश्वरीय जो उन्नति के संबंधित बातें होती हैं वो सब बाबा सुन करके उत्तर दिया करते थे। काफी समय बाबा एक एक को देते थे, लेकिन जैसे जैसे बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे तो बाबा धीरे धीरे सब समेटते जा रहे थे। हमने देखा कि 1961 में जहां बाबा एक एक बच्चे को 20 मिनट 25 मिनट भी देते थे, समाचार सुनते थे, 1966-67 के समय ऐसा समय आया बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दो तीन लाइन बस कहने के बाद कह देते थे, बाबा बच्चे बाबा समझ गया। और उसके बाद तो 1969 में तो ऐसा हो गया, वहां तक पहुंचते पहुंचते जैसे बाबा ने मानसिक रूप से सब धीरे धीरे समेटना शुरू जो किया था सब समेट लिया। और ये हम लोग देखते थे कि पहले बाबा जब इतना समय देते थे, बीच में फिर 5-7 मिनट, और अंत में 1969 में 17-18 जनवरी को जब हम यहाँ थे, कई बार बाबा से मिलना हुआ, बाबा को जाके ये बात बताएंगे, ऐसा समाचार सुनाएंगे, क्योंकि तब हम इंजीनियरिंग पास करके आसाम में पोस्टेड थे और आसाम से यहाँ आए थे। जैसे बाबा ने बुला लिया और दो दिन बाबा के साथ रहने का अंतिम दो दिन मौका मिला, तो हमने अनुभव किया बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे थोड़ा सा, और बस कुछ सेकंड दृष्टि दे के ही बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। मतलब हमें एक अक्षर भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी और जैसे बाबा मन के भावों को तुरंत समझ जाता था। एक बार, दो बार, तीन बार, दो दिन में लगभग 7 बार ऐसा हुआ जब बड़ा आश्चर्य होता था, एक अक्षर भी बोला नहीं और बाबा सारा समझ गया। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, जो बाबा ने हम बच्चों को भी कहा है। बाबा ने अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी, मन जीत लिया अपना यानी जगत जीत लिया। जगत में तो सभी मनुष्य आत्माएं, सभी पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति आ जाती है। तो इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है कि मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो पहला तो स्पष्ट ये लक्षण दिखता था बाबा ने जैसे मन को संपूर्ण रीति से जीत लिया अपने मन। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को भी लक्ष्य दिया है क्या कि खजाने तो बहुत हैं, ज्ञान का, योग का, जो बाबा ने खजाना दिया है, समय रूपी खजाना, संकल्प रूपी खजाना, सब जो खजाने दिए हैं टेबल पर, तो जितने खजाने बाबा ने दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बाबा ने खजाने दो बताए हैं, मालूम है ना सबको कौन से दो खजाने हैं? समय और संकल्प रूपी खजाना। तो बाबा ने ये समय और संकल्प रूपी खजाने पर संपूर्ण रीति से जैसे विजय प्राप्त कर दिया। एक तो हम बच्चों का ये लक्ष्य है, क्योंकि अगर संकल्प थोड़े भी व्यर्थ चले समय भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन दो खजानों पर विजय प्राप्त करते हैं।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
तो बाबा ने मन के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करी? बाबा को भी यह अनुभव होता था 1936-37 में जब ज्ञान में आए, जो हम लोग भक्ति मार्ग में कहते रहे हैं मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, बड़ा मुश्किल है, ऐसे शुरू से मान्यता रही है। बाबा ने भी यही मन अनुभव किया शुरू में। यही फर्क है दुनिया के गुरुओं में और बाबा की मार्ग प्रदर्शना में। कोई भी भक्ति मार्ग का गुरु अपनी मन की बात, घर की बात, अपनी कोई कमजोरी वो खोलेगा नहीं चेलों के सामने, शिष्यों के। लेकिन बाबा तो कहता था गुरु तो शिव बाबा ही है, ज्ञान देने वाला वो है, हम सब उसके ही बच्चे हैं, हम सभी कर्मातीत अवस्था के राही हैं। तो बाबा ने जब देखा मन बहुत भागता है तो बाबा ने क्या इशारत किया, मन को पत्र लिखा। वो बाबा का सिंधी में लिखा हुआ पत्र था, हम कुछ वरिष्ठ भाई बहनों को वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बहुत पहले दिया गया था। क्या लिखा बाबा ने उसमें? बाबा ने लिखा, ऑर्डर किया मन को, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री बलशाली हो गया और तूने मुझ राजा को कमजोर कर दिया, और जहां जहां तू चलता रहा मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा, तूने मुझे गुलाम बना लिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूं तू मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी है। बाबा ने ऑर्डर किया। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के साथ, मन के कहने पर उसके साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर बना दिया कि मैं भी तुम्हारा गुलाम हो गया। लेकिन अब मैं तुझे भी ऑर्डर करता हूँ हे बुद्धि, कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। तो बाबा ने ये मन और बुद्धि को ऑर्डर किया। हम लोग चाहते तो हैं कि मन हमारे वश में रहे, लेकिन मन को हम ऑर्डर करके अपने अधीन नहीं करते, यही फर्क है। जैसे लौकिक में कोई ऑफिसर होता है या बड़ा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो किसी पोजीशन पर है, अपनी चेयर पर है, तो सब उसका कहना मानते हैं, चेयर पर कह के बैठ के ऑर्डर करेगा। लेकिन अगर वो अपनी चेयर पर नहीं रहता, ट्रांसफर हो जाता है या मतलब नहीं रहा चेयर पर, तो कोई भी उसका कहना नहीं मानता। ऐसी हम बिना सम्मान की सीट पर स्थित हुए ऑर्डर करते हैं मन को, तो मन हमारी बात कैसे मानेगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं मन को अपने वश में करना, जो बाबा ने कहा है मन जीते जगत जीत, मन को ऑर्डर में करो, तो पहले हम अपने सम्मान की सीट पर स्थित हों। जो बाबा ने अनेक सम्मान दिए हैं, बाबा हम आपकी मस्तक बड़ी हैं, बाबा हम आपकी दिल तख्त नशीन आत्मा हैं, मैं कलप पहले की विजयी आत्मा हूँ, बाबा आपने मुझे कलप पहले भी विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो और कलप कलप हम विजयी बनते रहेंगे। बस इस नशे में हम जितना रहेंगे, मैं विजयी आत्मा हूँ और मैं मन मेरा मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूँ, बाबा की तरह ऑर्डर करके फिर हम मन को वश करेंगे, मन तुरंत वश में हो जाता है और हमारी हर आज्ञा का पालन करता है। एक दो बात हम ये करें, संकल्प रूपी और समय रूपी खजाने को जमा करने के लिए। दूसरी बात, वैसे तो बाबा ने अनेक पेपर बताए हैं, कई पेपर हैं जो हम बच्चों के सामने शुरू से आते हैं, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, पांच विकारों का पेपर, पुराने संस्कारों का पेपर, प्रकृति का पेपर, पांच तत्वों का, आदि आदि। लेकिन बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय के मुताबिक अभी बच्चों पर दो पेपर विशेष आने हैं। दो पेपर कौन से? एक बाबा ने कहा है शरीर का पेपर, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, अंत आत्मा पर बहुत कई जन्मों के विकर्मों का बोझा है और इस कारण से काफी बोझा हमारा रोग के द्वारा, भोग के द्वारा यहाँ चुकतू होना है। एक तो शरीर का पेपर बच्चों के सामने आएगा बहुत कड़ा, जो हमने देखा है बाबा मामा दादियां हर एक को पास करना ये पेपर। इसमें पास होने के लिए क्या हमारे पास वो रहे जो साकार बाबा में देखा हमने? बाबा से जब पार्टियां मिलने भी आती थी, तो बाबा को एक अभ्यास इतना पक्का हो गया था, कर लिया था, शरीर में आने का जब चाहें, जब चाहें शरीर से न्यारा होने का। बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे या बाबा अपने कमरे में, जब एक दो लोग होते थे, दो तीन, तो बाबा अपने कमरे में मिल लेते थे, पांच छह होते थे तो झोपड़ी में, नहीं तो अधिकतर बाबा हिस्ट्री हॉल में, तब ये हॉल वगैरह तो था नहीं, पार्टी 8, 10, 12, 15 ज्यादा होते थे तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो बस हर एक को टाइम दिया होता था, भाई 10 बजे मानो बम्बई की पार्टी मिलेगी, 10:30 दिल्ली की, 11 बजे कलकत्ता की, आदि आदि। तो बस पार्टी आती थी जाती थी, ब्राह्मणी पार्टी लेके बाबा के पास जाते थे, देखती थी बाबा बस अपनी मस्ती में मस्त है, आंख खुली हुई है, लेकिन बाबा को जैसे भान ही नहीं कब टीचर पार्टी लेके आई, टीचर सामने खड़ी भी हो गई, लेकिन टीचर वहां खड़ी होके बिल्कुल उसको ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बाबा ने देखा ही नहीं। और इस तरीके से ऐसा अनुभव होता था टीचर को कि बाबा जैसे अपने में ही मस्त। फिर टीचर बोलती थी बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को ऐसे जैसे जर्क सा, कोई ध्यान में नहीं होते थे, साक्षात्कार नहीं, आंख भी खुली है, लेकिन इतना देह से न्यारी अवस्था हो जाती थी बाबा की, फिर बाबा जैसे देह में आते। अच्छा बच्ची पार्टी लेके आई हो, अच्छा ओ बैठो, ऐसे करके फिर बाबा पार्टी से मिलते थे और सारा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे। तो ये शरीर से न्यारा होने का अभ्यास और शरीर में कर्म करते समय आने का अभ्यास, ये बाबा का प्रैक्टिकल बहुत बहुत बार देखा। यही अभ्यास हमें अंत समय में काम में आना है, जब चारों तरफ त्राही त्राही होगी, कष्ट होंगे, हाहाकार होगा। तो बाबा ने कहा बाहर अति हलचल लेकिन अंदर अति अचल। बाहर हाहाकार होगी, अंदर जय जयकार के नगाड़े बजेंगे, और वो तब होगा जब हमें शरीर से न्यारा होने का अभ्यास होगा। जब चाहे शरीर में आए पार्ट बजाए, जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाए। ये दूसरा अभ्यास जो हम सब बच्चों को बहुत आवश्यक है। तीसरा जो बाबा ने बताया है, अभी बच्चों के सामने सबसे बड़ा पेपर कौन सा आना है? अपने परिवार का पेपर, क्योंकि सब आत्माएं आ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है और कमजोर आत्माएं भी ज्ञान में आते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसी भी आत्माएं आएंगी जिन्हें चलने के लिए पांव तुम्हें देने पड़ेंगे, देखने के लिए आंखें देनी पड़ेंगी। उनकी इच्छा होगी हम ज्ञान में चलें, ज्ञान अच्छा लगेगा, लेकिन ज्ञान की धारणाओं को अपने अंदर मजबूत करने का उन्हें बल अनुभव नहीं होगा। इसीलिए उन्हें बल देने के लिए ये आप बच्चों को बहुत अभ्यास करना है, उन आत्माओं की इच्छाओं को, अंदर इच्छा होते हुए भी वो ज्ञान में संपूर्ण रीति से चल नहीं पाएंगे। इसमें आवश्यकता ये है। कई ब्राह्मण बच्चों के हम कई चलन ऐसी देखेंगे, कई पुराने भी होंगे, अब चारों तरफ कभी क्रोध का संस्कार, कभी कोई पुराना संस्कार जागृत होगा, हमारे मन में संकल्प होगा, अरे ये इतने 20 साल पुराने, 25 साल, 40 साल पुराने, इनमें भी यही विकार या यही कमजोरी, मेरे अंदर भी अगर हुई तो क्या हुई। और इससे हमारे व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कमजोर जो संकल्प भी होंगे और उसके कारण समय भी वेस्ट होगा, वो बहुत होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम कभी भी किसी भी आत्मा को देखें उसको एक काल की दृष्टि से ना देखें, तीनों कालों की दृष्टि से। आज भले ये आत्मा कमजोरी का पार्ट बजा रही है, लेकिन ये वही आत्मा है, भगवान की चुनी हुई आत्मा। बाबा ने कहा है कि मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी आज की दुनिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचा है, महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। समय पर उसकी प्रत्यक्षता होगी। आज हमें उसमें कमजोरी का पार्ट कुछ दिख रहा है, लेकिन हम ये न भूलें भगवान ने चुना है, और इस समय वो ये पार्ट, कोई फिल्म होती है, ड्रामा होता है, हर समय हर एक का एक जैसा पार्ट थोड़ी होता है। कोई कॉमेडियन होता है हंसी का पार्ट, कोई हीरो होता है, हीरोइन होता है, कभी दुख का पार्ट, रोने का, कभी नाचने का, गाने का, अलग अलग पार्ट होते हैं। इसी तरीके से हर आत्मा को हम तीनों कालों की दृष्टि से देखें। ये कल्प पहले वाली होवनहार महारानी महाराजा है, भगवान ने चुना है, अब भगवान का सिलेक्शन गलत नहीं, तो फिर हमारे मन में कभी भी किसी के पार्ट के प्रति संकल्प नहीं होगा, व्यर्थ संकल्प और समय नहीं होगा। तो एक ये हर आत्मा को हम तीन काल की दृष्टि से देखें। और चौथी बात, देखो बाबा इतना बुजुर्ग पुराना, कई बार बाबा को खांसी आती थी बहुत, हा? जनवरी का महीना इतनी, यहाँ पर तो बहुत सर्दी उन दिनों पड़ती थी टोटल, और इतनी आयु बाबा की, तो बस कई बार बोलते बोलते बाबा को खांसी आ जाती थी, कई बार आंखें भी गीले हो जाते थे। हम लोगों को दिल में होता था बाबा का ये देख के, लेकिन दूसरे ही क्षण देखते थे बस अभी बाबा को ये है, फिर बाबा एकदम देखता था। वो बाबा के हिस्ट्री हॉल में आप जाओ देखो, एक तरफ ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा होता था, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। देखो बच्चे अभी बाबा का ये पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, हिसाब किताब चुपतू हो रहे हैं, और खांसी आती है। बाबा शिव बाबा को कहता है, बाबा मुझे मेरी इस सखी से छुड़ाओ, ये मेरी सखी जो है ना बहुत मुझे प्यार करती है। कौन सी सखी? खांसी है ना, बाबा इसे छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहता था, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें चुकतू करना, अगर बाबा छुड़ाएगा तो तुम ही एक बाबा के बच्चे थोड़ी हो, सारे बाबा के, बाबा को हर एक बच्चे को छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतू करना है, इसीलिए तुम्हें इसे चुकतू करना है और बस इसे चुकतू करो और फिर तो आधा कल्प के लिए 2500 साल के लिए कोई व्याधि नहीं रहेगी। तो बाबा ने क्या युक्ति कैसे अपनाई हुई थी, खांसी आती थी, देखो वाह कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, अभी ये व्याधि है, पुराना शरीर है, बाबा ऐसा हमें बना रहा है, ऐसी नई दुनिया होगी और बस बच्चों को तो खुशी इतनी होनी चाहिए जो कोई गम हो उसे खा जाए, बहुत खुशी होनी चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। खग्गियां ये सिंधी शब्द सुना होगा, बताया भी है पहले, बाबा ने पूछा एक बार क्लास में, बच्चे कैसे खग्गियां मारते हैं मालूम है? नहीं मालूम था। तो बाबा ने कहा अरे बाबा करके बताता है, तो बाबा ऐसे खुशी में ना इतना हो तो कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, हो इतना वृद्ध शरीर लेकिन खुशी में बाबा का चेहरा ऐसा खिल जाता था, एकदम बालकृष्ण जैसा लगने लगता था बाबा। और बस ये है हमारी अंदर की स्थिति से बाहर की परिस्थिति पर विजय, जो बाबा अभी चाहता है। और इसीलिए अभी क्या होता है, बाहर की परिस्थिति से हमारी अंदर की स्थिति प्रभावित हो जाती है। बाहर खुशी का वातावरण है, यहाँ पर खुशी का वातावरण, अभी आप सब लोग यहाँ आए हो, मधुबन का वातावरण बड़ा शांत है, पवित्र है और सब, तो वैसी स्थिति है। लेकिन बाबा चाहता है ये स्थिति लेकर आप जाओ और जहाँ घर घर में जाओ, वर्क प्लेस पर जाओ, कार्य व्यवहार बिजनेस नौकरी धंधा, वहाँ का वातावरण परिवर्तित कर दो अपनी स्वस्थिति के आधार पर। अभी विज्ञान ने भी ये प्रयोग किए हैं, बड़ा सहज है। जापान के एक वैज्ञानिक ने क्या किया, 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास में अपने पॉजिटिव थॉट्स दिए, मदर टेरेसा लिखा उसके ऊपर, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द, मैं आपसे स्नेह करता हूँ, मदर टेरेसा माने ऐसी पवित्र आत्मा, उसके लिए उसका लिखा धन्यवाद। दूसरे गिलास पर लिखा भाई आई विल किल यू, आई हेट यू, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, हिटलर का कितना क्रूर व्यक्तित्व था। तो एक को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए, एक को पॉजिटिव, बहुत अच्छे, एक जैसा ही पानी, एक जैसा गिलास, लेकिन जब उस पॉजिटिव जिसको विचार दिए, उसके क्रिस्टल बनाए गए, जमाया गया, बड़े अच्छे ऑर्नामेंट जैसे जेवरात के शेप होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिस्टल, और जो नेगेटिव जिसको दिए उसके बड़े इररेगुलर शेप के, भयावनी शक्ल के ऐसे क्रिस्टल बने। तो देखो मन के विचारों का जब दूर रखे पानी पर इतना प्रभाव होता है, हमारे शरीर में तो 70% पानी है अंदर, तो जो 24 घंटे पानी हमारे साथ रहता है और हमारे मन में क्रोध अहंकार ईर्ष्या नफरत बदला लेने की भावना ये सब अगर विचार होंगे तो हमारा शरीर बीमारी ग्रस्त नहीं होगा तो क्या होगा। इसीलिए बाबा कहता है कि निगेटिव बिल्कुल, और बाबा का यही था, साकार बाबा का, कोई भी बात होती थी बच्चे आके बड़ी से बड़ी घटना सुना देते थे, बाबा कहते चलो बच्चे कोई बात नहीं, ड्रामा, अभी शायद ड्रामा में ये पार्ट है लेकिन विजय तो हमारी निश्चित है। बिल्कुल बाबा पानी पर लकीर की तरह वो बात जैसे एकदम विजय प्राप्त कर लेता। ऐसे बाबा चाहता है हम बच्चों से भी अभी कि बस खुशी हमारी इतनी हो कि अगर शरीर में व्याधि हो, कोई ऐसा समाचार हो, हिलाने वाला हो, कुछ भी हो, बस पानी पर लकीर की तरह एकदम आया भी सुना लेकिन अपना इम्प्रेशन न छोड़े, हमारी अवस्था को प्रभावित न करे। कितनी घटनाएं हैं समय के अभाव में, अभी तो नहीं सुनाते, लेकिन कितनी कितनी बाबा ने ऐसी परिस्थिति पार की। और क्या देखा बाबा का इस तरीके से, बाबा हाँ जब होते थे यहाँ पर बच्चों के साथ ना, बिल्कुल जैसा बच्चे होते थे बिल्कुल वैसा व्यवहार, हर एक को ये लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा का दिल जीतने की कला वो बाबा के अंदर विशेष थी। हम बच्चों को भी फ्लेक्सिबल ऐसा संस्कार हो हर एक के साथ घुल मिल जाए, और ऐसा संस्कार जितना जितना होगा तो अंत में हम उन आत्माओं के तभी इष्ट देव बन सकेंगे। बाबा के सम्मुख आते थे, कई बार सोच के आते थे बाबा से ये बात करेंगे ये करेंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा पूछते भी थे बच्चे कुछ कहना है, नहीं बाबा कुछ नहीं, सब भूल जाते थे जैसे वो स्थिति हो जाती थी। तो इसलिए बाबा अभी हम बच्चों के लिए जो बाबा कहता है ज्वालामुखी स्थिति हो, ज्वालामुखी माने ऐसा अग्नि, अग्नि का मुख्य गुण क्या होता है हर चीज का रूप परिवर्तित कर देती है अपना। तो इसीलिए ऐसा हो हमारा भी ज्वालामुखी योग जैसा स्थिति कि कोई आत्मा आए, बाबा कहता है रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आपके पास आए शांति की अनुभूति करते हुए वो आत्मा वहां से चली जाए। हम उसका रूप परिवर्तन करते हैं। कैसे होगा रूप परिवर्तन? बाबा ने यही बताया कि जब हमारा ये तन और मन, ये दोनों हमारा संपूर्ण रीति से पवित्र और ईश्वरीय सेवा में अर्पित होगा। देखो शुरू में ये तो सबने पढ़ा है, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख जो आता था हर एक को दिव्य साक्षात्कार होते थे, कोई कृष्ण कोई नारायण सतयुग के दृश्य सब बाबा को आते थे, देखते ही ध्यान में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा वही आत्मा थी कृष्ण की। लेकिन ये भी हम लोगों ने सुना है कि शुरू में जब ये ज्ञान में आए तो एक परिवार था सरदार का परिवार, उन्होंने वो मतलब सरदार जी ज्ञान में नहीं थे और सबने सरदार जी को बहुत भड़काया, तो सरदार जी ने ये निश्चय किया मैं बाबा की हत्या कर दूंगा मार दूंगा। तो एक बार वो मौका देख के छुरा लेके बाबा के पास गया, बहन से कहा मुझे बाबा से मिलना है, बहन ले गई बाबा के पास। बाबा के पास जाके बैठा जैसे कि बहुत भक्त है बाबा का, और बहन बैठा के चली गई और वो बैठा रहा, बात होती रही बाबा से, और समय देखकर जब देखा अभी अकेले हैं दोनों, उसने छुरा निकाला और बाबा को परवार करने जा रहा था। तो आप सबने पढ़ा होगा क्या हुआ फिर उसे किसका साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव। अब बाबा कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा थी नहीं, कृष्ण का साक्षात्कार नारायण का सुरक का वो तो ठीक है बाबा वो आत्मा थी, लेकिन गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो आत्मा जैसी इच्छा जिसकी श्रद्धा जिसमें होगी बाबा हमारे द्वारा वो साक्षात्कार कराएगा। अब उसको अगर कृष्ण का साक्षात्कार होता या नारायण का, उसकी तो उसमें श्रद्धा थी नहीं, लेकिन उसकी चूंकि गुरु नानक देव में श्रद्धा थी तो बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा गुरु नानक देव का साक्षात्कार किया। यही पार्ट हमारे द्वारा अंत में चलने हैं। बाबा ने कहा है अंत में आत्माएं आएंगी, हम एक होंगे, 10 आत्माएं हमारे सम्मुख आई और कोई कृष्ण का भक्त है, कोई नारायण का, कोई देवी का, कोई हनुमान का, कोई गणेश का, अलग अलग इष्ट देव हैं उनके, लेकिन हम चाहे एक हैं, लेकिन जैसी उनकी भावना होगी बाबा हमारे द्वारा उनको वैसा ही साक्षात्कार कराएगा, और तब ही ये सिद्धांत निकलेगा जो द्वापर युग से भाई जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, भगवान सर्वव्यापी है। क्यों? क्योंकि हमने इतना हम जैसे न्यारे और प्यारे स्थिति में होंगे तब भगवान हमारे तन का हमारे मन का आधार लेके अंत में बाबा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराए। अब हमें वो तैयारी करनी है कि हमारे तन मन के द्वारा कोई भी अपवित्र कार्य की बात तो दूसरी रही, मन के अंदर संकल्प भी अपवित्र और ऐसा न हो जो श्रेष्ठ न हो। तो बाबा हमारे द्वारा देखो अंत में इतने पार्ट बाबा ने कहा है जो आदि सो अंत, अंत में साक्षात्कार के पार्ट बहुत बहुत चल रहे हैं हमारे आपके द्वारा ही। तो इसीलिए अभी से हम वो तैयारी करते चले और बाबा का यही तैयारी थी बस, बाबा के सम्मुख जो आता था हरेक को अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार होते थे। और बाबा का क्या देखा है, बाबा अंत समय में ना जब आए, 18 जनवरी की बात है, यहीं पर ही हिस्ट्री हॉल में बाबा आए, अंतिम मुरली बाबा ने चलाई बिल्कुल। तो वैसे बाबा को उन दिनों 2-3 दिन में खांसी काफी आती थी, बहुत सर्दी थी, लेकिन अंतिम मुरली आप सुनो, यहाँ पर कैसेट में भरी हुई भी मिलती है, सीडी भी उसकी, 18 जनवरी 1969 की मुरली। उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल जो इस बात का प्रतीक है क्या, अंत समय में जब कर्मातीत अवस्था हमारी होगी तो कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, कोई भी कर्म भोग की हमें व्याधि का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। और बिल्कुल बाबा ने मुरली ऐसी चलाई, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी। उसके बाद बाबा ने सब बच्चों को याद प्यार दी और याद प्यार दे के बाबा बस हिस्ट्री हॉल के बाहर तक गए। अब बाहर जाके बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले थे। हमेशा इतने साल तक मुरली चलाई, उसी दिन ही बाबा ने अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी हमें इस बात का आभास हो जाएगा कि हाँ अब हम बस इस शरीर से छुट्टी ले रहे हैं, हंसी खुशी हाँ बाबा अब हम आपके पास आए कि आए। ऐसी स्थिति की अभी हमें तैयारी करनी, और वो कब होगी, जब हमने सब तरफ से बुद्धि को समेटा हुआ होगा। अगर कोई भी काम पेंडिंग होगा, घर का, लौकिक का, तन का, मन का, धन का, संबंध का, कोई भी कार्य, वहां बुद्धि बार बार जाएगी और वो हमें अशरीरी और संपूर्ण नहीं बनने देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से ही हाँ बाबा के सारे कार्य करो। अंत तक भी बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन हरेक को कार्य अपना अपना बांट दिया। ऐसा नहीं कि हम चले जाएं और अंत में परिवार के या बिजनेस के संकल्प चलते रहे पार्टनर के, अरे क्या हुआ ये नहीं मालूम, ये ऐसा है कैसा होगा, वो संकल्प हमें यहाँ पुनर्जन्म के लिए खींच लेंगे। इसीलिए सब तरफ से समेटा हुआ हो, जैसे बाबा का इतना बड़ा कारोबार पहले से ही बाबा ने मम्मा को जैसे निमित, मम्मा के बाद दादी और दीदी को निमित बना दिया सारा कार्य हर जगह। भले बाबा सब देखते थे करते थे, लेकिन हर एक निमित्त। तो ऐसा ही हमारा कहीं पर बुद्धि का योग अटका हुआ न हो, एक ये देखना है हमें समेटा हुआ हो। उसके बाद बाबा जैसे अंदर गए, दादी भी बस दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए जैसा हम सब ने सुना है बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन वंडरफुल बात, सबसे आश्चर्य की बात तो उसके बाद देखी, क्या बाबा ने 18 जनवरी को रात को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद बाबा का अंतिम संस्कार किया गया यही शांति स्तंभ वाली जगह पर यहाँ पर। और लेकिन बाबा का वैसा ही चमकता हुआ शरीर रहा, इतने 65-70 घंटे हो गए लेकिन चमक शरीर बिल्कुल काला नहीं पड़ा, वैसे ही शरीर चमकता रहा। बाबा को हम लोगों ने अंतिम स्नान कराया, बाबा का शरीर जैसे फ्लेक्सिबल वैसा है, नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, सबको मालूम है, अनुभव है। लेकिन बाबा ने प्रकृति के इन 5 तत्वों को भी इतना पावन बना लिया था, इतना शुद्ध बना लिया था कि बस शरीर ने भी जैसे इन 5 तत्वों ने भी अंत तक साथ दिया, अंतिम चित्र भी देखो, बिल्कुल चमकता हुआ लगता था जैसे हमेशा की तरह। हाँ? बाबा जब यहाँ बाहर चित्र लग रहा है ना, आपने देखा होगा ना, बाबा के पास जब हम आते थे बाबा ऐसे हाथ फैला देते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, और हम बस जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया हुआ था। आप सबने भी सुना है ना, लिखा था बाबा ने डायरी में, लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी बाबा की लड़की का नाम, और नारायण बाबा के पुत्र का नाम। भाई व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, पत्नी में, पति में, पुत्र में, पुत्रियों में, धंधे में, पैसे में, संबंधियों में, यही तो व्यक्ति की बुद्धि जाती है। तो बाबा ने लिख लिख के इतना पक्का कर लिया था, तो जिसको भी बाबा दृष्टि देता था वो बस विदेही हो जाते थे। हमें याद है, बस बाबा के पास जाते थे, बाबा जरा सा यूं दृष्टि देता था और हम जैसे कोई ध्यान में नहीं जाते थे, कोई साक्षात्कार में नहीं, लेकिन देह का भान भूल जाता था। और फिर क्या होता था, बाबा कुछ आधा मिनट एक मिनट के बाद यूं थप थप करता था, हाँ बच्चे आओ आओ ऐसे, तो जैसे बाबा फिर से देह में लाने का पुरुषार्थ। उसके बाद जैसे हम खींच करके आते थे और फिर बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, अब एक जाता था फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था। तो बाबा कुछ समय के लिए भी चाहे इतना खुद आत्मिक भान में स्थित था कि दूसरे को दृष्टि देता था वो भी विदेही हो जाता। अब बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि हमारा अपना अभ्यास आत्मा का इतना पक्का हो, मैं शुद्ध शक्तिशाली परम पवित्र आत्मा हूँ, और जिसको भी हम दृष्टि दें बस वो आत्मा भी विदेही स्थिति का अनुभव करे, तब प्रत्यक्षता होगी। अब बाबा ये बाबा का प्रैक्टिकल में देखने में आता था, अभी बाबा यही हम बच्चों से चाहता है, एक ये प्रैक्टिकल में हम अनुभव करें और कराएं। एक बाबा ने ये कहा। तो अंतिम दिन की बात मैं बता रहा था कि बस बाबा का बिल्कुल ऐसा शरीर छूट गया, लेकिन चमकता हुआ वही सफेद, जैसे व्हाइट कम्प्लेक्शन था बाबा का, वैसे ही सफेद, बस बाबा लगता था जैसे सोया हुआ है, अभी उठ के हमेशा की तरह कहेगा बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। और फिर बाबा का संस्कार वगैरह किया गया, लेकिन प्रकृति जीत कैसे बना बाबा, बस उसके एक एक बात खास समझने की है संक्षिप्त में। अगर हमें भी, क्योंकि अंत में हमारे सामने और बड़े से बड़ा ये पेपर एक जो हमारे वश में नहीं होगा वो है ये प्रकृति का पेपर, पांच तत्वों का, बैठे हैं एकदम अर्थ को अखिले। गुजरात वालों को तो मालूम है कच्छ भुज का अनुभव है, अहमदाबाद में भी उस समय आया था, हम उस दिन अहमदाबाद में ही थे 26 जनवरी के दिन उस दिन, और देखा हमारे सामने ही सामने किस प्रकार से बिल्डिंग हिल रहे हैं, और कुछ बिल्डिंग्स तो धाराशाही भी हो गए थे। तो ये जो सडन पेपर आना है इसके लिए क्या करना है, बड़ा अच्छा युक्ति बाबा ने, जो बाबा का देखने में आता था, ये जो तत्व है ना, इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें। मित्र जो है मित्र की समय पर रक्षा करता है, मित्र कभी मित्र के प्राण नहीं लेता, और मित्रों के बीच में एक जैसे संस्कार होते हैं। आप सब अनुभव है कि क्लास मुरली पूरी होती है, बहन जी की मुरली, मुरली के बाद सब जाएंगे, जिन जिन के संस्कार थोड़े आपस में मिलते होंगे, आपस में दो चार लोग बैठ के थोड़ी बहुत बात बात करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो हम भी अपने संस्कारों को इन तत्वों के संस्कारों के साथ मिलाते चले। धरती का संस्कार है, क्या है धरती का संस्कार, सबसे बड़ा संस्कार है दातापन का। धरती देती है, एक बीज आप धरती में बो दो पूरा वृक्ष निकलेगा, हजार बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही बाबा चाहता है धरती का ये संस्कार हम अपने अंदर धारण करें, दाता बनकर देते चलो। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, स्नेह, आदर, सत्कार, ये चीज जिसमें कोई खर्चा नहीं है, जिस आत्मा से भी मिले हर आत्मा को ये महसूस हो हम इतना प्यार दे, स्नेह दे, उसे ये महसूस हो हाँ ये मेरी ही आत्मा है। तो उससे क्या होगा, धरती का ये संस्कार अगर हमने अपने अंदर धारण कर लिया तो चाहे जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, जमीन हिलेगी, जितनी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर हमने ये धरती का संस्कार, पृथ्वी का संस्कार धारण किया होगा तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। पृथ्वी हमें सदा सहयोग देगी, हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगी, क्योंकि उसे हमने अपना मित्र बना लिया, उसका ये संस्कार हमने धारण कर लिया। हर एक तत्व का आप देखो, हर एक में 8-10 गुण इतने विशेष है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक तत्व का वर्णन करता हूँ, एक गुण का। ऐसी जल में विशेष गुण कौन सा है? शीतलता का। और जल में सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में लो, चम्मच में, हर जगह जल सेट हो जाता है। ऐसे हमारा संस्कार भी ऐसा हो, हर मनुष्य आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ऐसा ना कहें कि भाई इनके साथ तो सेट होना इजी है, उनके साथ मुश्किल है, नहीं। जल जैसे हर एक के साथ सेट हो जाता है, ऐसे ही अगर हमने अपना एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण धारण किया होगा, उसकी पहचान ये है, हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। जल देखो, जल बह रहा है, जल के सामने बहुत बड़ा पत्थर भी आ जाए, वो जल अपना रास्ता बना के निकल जाएगा, वो ये नहीं इंतजार करेगा पहले ये बाहर की पत्थर जो है ये हटे तब मैं आगे बढ़ूं, नहीं, अपना रास्ता बना के निकल जाए। ऐसे ही जल की तरह अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा एडजस्टमेंट हमारी नेचर हो, जैसे बाबा की थी, युवा आते थे, युवाओं के साथ बाबा ऐसा लगता था बिल्कुल बाबा युवा जैसा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी, आओ बच्ची तुमने बहुत बाबा भगवान को ढूंढा है, थक गई हो, भक्ति किए है, आओ बाबा तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव ज्ञान योग से दबाता है। बस ऐसा बाबा उनके साथ हो जाता था, हर एक को लगता था अरे बाबा तो मेरा है। ये एडजस्टमेंट का संस्कार जितना होगा, वो कभी भी जल तत्व में, अंत में जितनी सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, नदियों में बाढ़ आएगी, पुर आएगा, तूफान, कुछ भी आए, वो कभी भी हमारे दुख का, अशांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जल के साथ हमने अपने संस्कार को मिला लिया। ऐसी वायु का क्या संस्कार है? हल्कापन, हल्की चीज वायु, हल्की चीज ऊपर उठती है, भारी चीज नीचे आती है। तो हम में भी सदा हल्केपन का संस्कार, कोई परिस्थिति हो, पेपर हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, संबंधों में कटुता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमें कभी भी भारी ना करे। उससे क्या होगा, हम जितना हल्के रहेंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे, तो अंत समय में चाहे जितने साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन ये हमारे मृत्यु का कारण नहीं। अभी देखो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, सब पर वो, कहीं पर भी कोई समस्या होती है दुनिया में, अपनी सैन्य बल से, अणु शक्ति से वो सबसे ऊपर रहता है, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी भी नहीं चलती। सबसे ज्यादा तूफान आजकल अमेरिका में ही आते हैं, साइक्लोन आते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम समस्या, क्यों? क्योंकि प्रकृति का उसने सबसे ज्यादा दोहन किया है, तो प्रकृति भी उससे गिन गिन करके जैसे हिसाब छुपतू कर रहे, ऐसे ही सभी ने प्रकृति का दोहन किया है। तो अभी आवश्यकता ये प्रकृति, हमारी मन की प्रकृति हम इतनी शक्तिशाली कर दें, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाहर की प्रकृति हमारी मन की प्रकृति का ही प्रतिबिंब है, दर्पण है। अगर हमारे मन की प्रकृति स्ट्रांग होगी तो बाहर की प्रकृति भी वैसे ही होगी, स्नेहयुक्त, शक्तिशाली। इसीलिए सत्युग त्रेता में हम बिल्कुल पवित्र हैं, शक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, तो सत्युग में हमारे बाहर की प्रकृति में भी कभी अर्थक्वेक नहीं आता, फ्लड नहीं होते, तूफान नहीं आते, कभी हलचल नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारी ही प्रकृति का वो प्रतिबिंब है। इस रीति से ऐसे ही आकाश, आकाश का क्या बड़ा गुण है? विशालता। और विशालता है और आकाश में ना ही जो सैटेलाइट वैज्ञानिकों ने छोड़े हुए हैं उसी के द्वारा ही तो आज हम मोबाइल से किसी से भी बात कर लेते हैं, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, एक सेकंड में दुनिया के एक कोने की खबर दूसरे कोने में पहुंच जाती है, उसका चित्र देख लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऐसे ही आकाश जैसी जितनी विशालता हमारे हृदय में होगी ना, जैसे बाबा के उसमें थी, हमने देखते थे बाबा के सम्मुख कुछ भी किसी की भी कोई बात ले जाओ, बाबा सुन के सावधानी भी देते थे लेकिन अगले क्षण भूल जाते थे। भूल क्यों? क्योंकि दिल से बाबा उसे क्षमा कर देते थे। आज हम ये चेक करें कि मेरे में वो क्षमा करने की शक्ति है। महान आत्माओं का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। हम इतने महान बन रहे हैं, बाबा बना रहा है हमें, अपने अंदर चेक, किसी की भी कोई बात हो दिल में अंदर नहीं जानी चाहिए। होता क्या है, नहीं तो किसी ने कभी कोई हमारे साथ बुरा किया है, इतने वर्षों बाद भी आज भी सामने आता है, हमें पुरानी घटना याद आ जाती है, हमारा व्यवहार उसके प्रति वैसा ही हो जाता है। नहीं, क्षमा, क्षमा करते चलेंगे उतना महान बनते चलेंगे, और वो ही महानता हमें ना अल्टीमेट महानता की ओर ले जाएगी। तो इसीलिए बाबा में ये देखा, और वो तब होगा जब आकाश जैसी विशालता हमारे हृदय के अंदर होगी। ऐसे इसी यही पांच तत्वों के गुण, हम सूर्य का तो बताया ना, सूर्य अग्नि का प्रतीक है ये तत्व, तो अग्नि तत्व में यही विशेषता है, हर एक चीज को परिवर्तित कर देना। तो हमारा भी स्वरूप ऐसा हो, कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा दुखी अशांत आए, उसका रूप परिवर्तित करके सुख और शांति में। और ये बड़ा सहज है, आज के जमाने में सतयुग त्रेता की बात तो दूर रही, 100-200 साल के पहले की भी बात लेते हैं, हमने सुना है तानसेन ऐसे वो राग निकाला करते थे, बस राग मल्हार निकालते थे, वर्षा होने लगती थी, राग दीपक बजाया करते थे और दीपक जल जाया करते थे, यानी प्रकृति ऐसे ऐसे। हमारे द्वापर युग के भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे, बहुतों की कथाएं सुनी है, उनके सम्मुख शेर आते थे, बिल्कुल पालतू जानवर की तरह बैठ जाते थे, कोई हिंसा नहीं करते थे, उनकी आंतरिक नेचर, आंतरिक जो प्रकृति इतनी स्ट्रांग थी कि बाहर की प्रकृति को भी संपूर्ण रीति से वश में कर लेती थी। बस आज बाबा यही चाहता है हम अपनी प्रकृति को जीतें जैसे बाबा ने जीता, और प्रकृति जीत, जगत जीत बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।